पिछले अध्याय में आपने देखा कि देवांश ने दिशा से अपने प्यार का इजहार किया और दिशा ने उसकी बात मान ली। रुद्र ने उन लोगों को सजा दी जिन्होंने उसकी गन फैक्ट्री पर हमला करने की कोशिश की थी। अब आगे, रुद्र जंगल में उन लोगों को सजा देता है जिन्होंने उसकी फैक्ट्री पर हमला किया था। वे उन्हें क्रूरता से मारता है और अमन उसके शैतानी रवैये पर टिप्पणी करता है जिसे रुद्र सुन लेता है। देवांश के ऑफिस में दिशा काम करने के लिए अपनी शर्तें रखती है। अब नेक्स्ट चैप्टर 164। देवांश के ऑफिस में देवांश अपने चेहरे पर वही पागलपन भरी मुस्कुराहट लिए हुए दिशा की ओर पलटता है और दिशा के पास जा उसके करीब बैठ जाता है, जिसे देख दिशा तुरंत थोड़ा पीछे हो जाती है। जिसे देख देवांश बोला, गुड गर्ल, तुम्हें आना तो मेरे करीब ही है, तो फिर ये दूरियां क्यों? वैसे गुड गर्ल, मानना पड़ेगा मेरी पसंद सच में खास है, वरना जिस देवांश सिंघानिया के सामने लोग अपनी नजरें और जुबान देखने और खोलने के पहले 10 बार सोचते हैं, उस देवांश सिंघानिया के सामने मेरी गुड गर्ल शर्त रखने की हिम्मत कर रही है, इसीलिए तो गुड गर्ल तुम मुझे इतनी पसंद हो। देवांश की बातों को सुनकर दिशा कुछ भी नहीं बोलती, बस अपनी नजरें फेर लेती है। वही देवांश दिशा को यूं खुद से नजरें फेरता हुआ देख उसके चेहरे को पकड़ अपनी तरफ करते हुए बोला, गुड गर्ल, जब मैं तुमसे बात करूं तो यूं मुझसे नजरें मत फेरा करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरी गुड गर्ल मुझसे अपनी नजरें फेरे, मुझे तुम्हारी नजरें अब हर वक्त अपने ऊपर चाहिए। तुमने अपनी नजरें मुझसे बहुत फेर ली, लेकिन अब मैं हर वक्त तुम्हारी नजरें अपने ऊपर चाहता हूं। देवांश की बात सुनकर दिशा देवांश के हाथ को अपने चेहरे से हटाते हुए बोली, सर, ये मेरी लाइफ है और मुझे अपनी लाइफ में जो करना है मैं वही करूंगी, आज मुझे हर एक चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके इस ऑफिस में काम करूं तो आपको मुझसे दूर रहना होगा, आपको मुझसे ये वादा करना होगा कि आप कभी भी मेरे करीब आने की कोशिश नहीं करेंगे। फिर अपने हाथों में देवांश की ही पहनाई हुई रिंग को उसे दिखाते हुए बोली, साथ ही साथ आपको इस रिंग को मेरी उंगली से अभी के अभी निकालना होगा, तभी मैं इस ऑफिस में दोबारा काम करूंगी। दिशा की बात सुनकर देवांश के होठों के कोने मुड़ जाते हैं और वे दिशा के उस हाथ को पकड़ते हुए बोला, गुड गर्ल, तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे हाथों से ये रिंग निकाल दूं? देवांश की बात सुनकर दिशा मासूमियत से अपना सर हाँ में हिला देती है, जिसे देख देवांश के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ जाती है और वे अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए दिशा के उस हाथ को किस करते हुए कहता है, गुड गर्ल, यू आर सो इनोसेंट, तुम्हें वाकई लगता है कि मैं कभी भी तुम्हारे इन खूबसूरत हाथों से अपनी पहनाई हुई रिंग निकालूंगा? अगर तुम ये सोचती हो गुड गर्ल कि मैं कभी भी ऐसा करूंगा, तो गुड गर्ल भूल जाओ, क्योंकि वो दिन कभी भी नहीं आएगा। देवांश की पहले की बात सुनकर जहां दिशा को ये लग रहा था कि देवांश अब उसकी बात मान लेगा, लेकिन देवांश को अपने हाथों पर किस करता हुआ देख और उसकी आगे की बात सुनकर उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में रूही अपनी कुछ क्लासेस खत्म करने के बाद बाहर आ जय को ढूंढने लगती है, मगर बहुत ढूंढने के बाद भी उसे जय कहीं नहीं मिलता, जिसे देख रूही खुद से ही कहती है, क्या यार, ये लड़का कहाँ चला गया? अगर इस बार भी मुझे ये लड़का नहीं मिला तो मैं उसे अब सॉरी बोलूंगी ही नहीं, अब हो गई गलती, मैं क्या करूं, उसकी भी तो गलती है, उसे मुझे बताना चाहिए था कि मेरे ऊपर बुक गिरने वाली है, अगर वे मुझे बता देता तो मैं उसे थप्पड़ नहीं मारती, अब अचानक ही वे मुझे आकर इस तरह पकड़ेगा तो मैं उसे थप्पड़ भी मारूंगी ना। इतना बोल वे अपना मुंह बना लेती है, तभी उसे कुछ दूरी पर जय दिखता है जो अकेले ही फील्ड में बास्केटबॉल खेल रहा था, जिसे देख रूही जय की तरफ चली जाती है। कुछ देर में वे जय के करीब आती है और जय का नाम पुकारने लगती है। वही जय रूही को एक नजर देख वापस से बास्केटबॉल खेलने लगता है और रूही को इग्नोर कर देता है। वही रूही जब देखती है कि जय उसे इग्नोर कर रहा है तो वे अपने बैग को साइड में रखती है और अपने खुले बालों को बांधते हुए वे जय के हाथ से बॉल छीन उसके साथ खुद भी बास्केटबॉल खेलने लगती है। वही जय पहले तो रूही को बास्केटबॉल खेलते हुए देख हैरान होता है, लेकिन उसके बाद वे भी रूही के साथ बास्केटबॉल खेलने लगता है। इस गेम में कोई भी हारने को तैयार नहीं था, कभी वे बॉल रूही के हाथ में रहती तो कभी जय के, दोनों एक दूसरे को बराबरी से चक्कर दे रहे थे। कुछ देर यूं ही गेम खेलते खेलते अचानक ही रूही का पैर हल्का सा मुड़ जाता है, जिसके रूही गिरने वाली होती है, जिसे देख जय अपने हाथों से बॉल को छोड़ रूही को उसकी कमर से थाम लेता है। वही रूही जिसने गिरने के डर की वजह से तुरंत जय के कंधों को पकड़ अपनी आंखें बंद कर लेती है, जब वे देखती है कि वे गिरी नहीं है तो तुरंत अपनी आंखें खोलती है और जय को खुद को पकड़ता हुआ देख चैन की सांस लेती है। वही जय रूही को खड़ा करते हुए बोला, स्वीटी, तुम ठीक तो हो ना? जय की बात सुनकर रूही अपना सर हाँ में हिला देती है, जिसे देख जय रूही को छोड़ देता है, मगर जय के छोड़ते ही रूही की एक दर्द भरी आवाज निकल जाती है और वे तुरंत जय के कंधे को पकड़ लेती है। वही जय भी थोड़ा परेशान होते हुए रूही को दोबारा कमर से थामते हुए बोला, स्वीटी, तुम्हें क्या हुआ, तुम चिल्लाई क्यों? जय की बात सुनकर रूही अपनी दर्द भरी आवाज में बोली, मुझे लगता है कि मेरा पैर मुड़ गया है, इसीलिए मुझे अपने पैरों में दर्द हो रहा है। रूही की बात सुनकर जय उसके बोला, ठीक है, क्या तुम चल पाओगी? जय की बात सुनकर रूही अपना सर हाँ में हिला देती है, जिसे देख जय रूही को सहारे देते हुए उसे अपने कदम आगे बढ़ाने को बोलता है, जिसे समझ रूही जैसे ही अपना पैर आगे बढ़ाती है वे फिर से लड़खड़ा जाती है और उसकी दर्द की वजह से हल्की सी आह निकल जाती है, जिसे देख जय रूही को संभालते हुए अपना सर नामे हिलाता है और रूही को डांटते हुए कहता है,
स्वीटी तुम्हें क्या जरूरत थी मेरे साथ बास्केटबॉल खेलने की, देखा तुमने खुद को चोट पहुंचा लिया। जय की बात सुनकर रूही कुछ नहीं बोलती, जिसे देख जय कुछ ऐसा करता है जिसे देख रूही की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उसके चेहरे पर डर नजर आने लगता है।